यूरोप और चीन का संपर्क। प्राचीन काल से ही हम चीन का यूरोप के देशों से व्यापार के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। यूरोप में चीन की रेशमी सिल्क और अन्य उत्पादों की बड़ी मांग थी और यह स्थल मार्ग थे। एशिया का व्यापारिक मार्ग लाल सागर से होता हुआ भूमध्य सागर पहुंचता था, पर जब 1453 में तुर्क विजेता मोहम्मद द्वितीय ने कॉन्स्टेंटिनोपल को जीत लिया तो इन रास्तों से यूरोपियन व्यापारियों के लिए व्यापार करना संभव नहीं रहा और अब उन्हें अपने लिए नए व्यापार मार्ग की तलाश करनी पड़ी। और यह 1453 में जब वास्को डिगामा ने अफ्रीका का चक्कर काटते हुए सामुद्रिक मार्ग से भारत की खोज की, तब यूरोपियन व्यापारियों को अपने व्यापार के लिए नए सामुद्रिक मार्ग की जानकारी हुई। 1514 ईस्वी में वो पहली बार चाइना पहुँचे, पर इस समय चीन में वे प्रवेश नहीं पा सके। व्यापार के लिए जो माल वे अपने साथ लाए थे उसे बड़े मुनाफे पर बेचकर वो मलक्का वापस चले गए, पर व्यापार से जो उन्हें भारी नफा हुआ था उससे आकृष्ट होकर पुर्तगीजों ने 1517 में अपना एक प्रतिमंडल पेकिंग भेजा और वहाँ व्यापार मंडल की प्रतिनिधि सभा से मुलाकात कर अपने लिए व्यापार करने की इजाज़त मांगी, जिसका नेता थॉमस फिरेस था। कैंटन पर उन्हें व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी गई, पर चीन की सरकार इन विदेशियों को अच्छी निगाह से नहीं देखती थी। इसका कारण यह था, पुर्तगीज लोगों का एशिया के लोगों के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं था। वे उन्हें हीन समझते थे और वे जबरदस्ती उनमें ईसाई मत का प्रचार और प्रसार करते थे। भारत, मलाया आदि में जब पुर्तगीज शुरू में गए तो उन्होंने इन देश के निवासियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। उनका विचार था, जैसे स्पेनिश लोगों ने अमेरिका के मूल निवासियों को नष्ट कर वहां अपनी अस्थायी बस्तियां बसा ली हैं, वैसे ही एशिया में भी किया जा सकता है। पुर्तगीज लोगों का उद्देश्य एशिया के विविध प्रदेशों में व्यापार करना ही नहीं था, बल्कि वे वहाँ की सभ्यता को नष्ट कर वहाँ के लोगों को गुलाम बनाकर वहाँ पर अपने ईसाई मत का प्रचार करना चाहते थे और इस तरह वे वहाँ अपने उपनिवेश की स्थापना करने का प्रयास कर रहे थे। पुर्तगीज लोगों के इस व्यवहार के समाचार पेकिंग पहुँच चुके थे। इस दशा में चीन के मिंग वंश के सम्राटों ने यह निश्चय किया कि पुर्तगीज लोगों को चीन में प्रवेश न दिया जाए। फिरेज और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। चीन के विभिन्न नगरों में जो पुर्तगीज व्यापारी बस गए थे उन्हें देश से बाहर चले जाने का आदेश दे दिया गया। यही कारण है कि इस काल में पुर्तगीज लोग चीन में ना कहीं अपनी बस्ती बसा सके, ना व्यापार के लिए वहाँ कोठियाँ कायम कर सके। पर कैंटन के समीप के द्वीप को उन्होंने अपना व्यापार केंद्र बनाया। वहाँ रहकर वे चीन के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने की कोशिश करने लगे। 1557 में पुर्तगीज लोगों ने मकाओ में अपनी एक बस्ती कायम की जो अब भी उनके अधीन है। इस बीच में स्पेनिश लोग फिलिपिन द्वीप समूह को अपनी अधीनता में ला चुके थे। 1557 में वे फिलिपिन से चीन आए और वहाँ के व्यापार में हाथ बटाने लगे। डच और इंग्लिश लोगों ने भी पुर्तगीज और स्पेनिश लोगों का अनुसरण किया। 1637 में डच लोग चीन आए और इस समय अंग्रेज़ों ने भी वहाँ आना शुरू कर दिया था। 16वीं सदी में रूसी लोग बड़ी तेजी के साथ उत्तरी एशिया में आगे बढ़ रहे थे। साइबेरिया उनके प्रभुत्व में आ चुका था। 17वीं सदी के अंत तक रूस की सीमा चीन के साथ आ मिली थी और रूसी लोग भी इस बात के लिए प्रयत्नशील थे कि चीन के साथ व्यापारिक संबंध की स्थापना की जाए। इस प्रकार 16वीं और 17वीं शताब्दियों में अनेक यूरोपियन राज्यों ने अपनी अपनी कोशिशें चीन से व्यापार करने की जारी रखी। बाद में अन्य पश्चात देशों ने भी व्यापार के लिए चीन आना आरंभ किया। 1639 में फ्रेंच जहाज कैंटन पहुँचे और 1731 में डेनमार्क के जहाज। 1732 में स्वीडन ने भी चीन एक जहाज भेजा। रूस न केवल स्थल मार्ग से चीन के साथ अपना संबंध बनाने के लिए प्रयासरत था, उसने व्यापारी जहाज 1753 में कैंटन भेजा। 1784 में एक अमेरिकन जहाज भी चीन पहुंच गया था। चीन के शासकों के सम्मुख अब यह समस्या उपस्थित हुई कि इन यूरोपीय राज्यों के साथ किस प्रकार व्यापारिक संबंध बनाया जाए। यद्यपि चीन के सम्राट विदेशियों को इस प्रकार अपने राज्य में प्रवेश करने एवं व्यापार करने के विरोधी थे, पर सुदूरवर्ती प्रदेशों पर उनका शासन इतना सुदृढ़ नहीं था कि वे अपनी नीति को सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर सके। विदेशी व्यापारी स्थानीय शासकों को रिश्वत आदि देकर एवं अन्य प्रकार से उन्हें अपने प्रभाव में लाकर वहां अपने व्यापार को जमाने की कोशिश करने लगे। चीन लोग स्वभाव से अतिथि सेवी होते हैं, विदेशियों का भी स्वागत करते हैं। स्थल मार्ग से जो यूरोपियन लोग पिछली सदियों में चीन आते जाते थे, चीनी लोगों का उनके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार था। पर समुद्र मार्ग से आने जाने वाले यूरोपियन लोग व्यापार से ही संतुष्ट नहीं थे, वे अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए भी प्रयासरत थे। उनका यह प्रयत्न था कि एशिया के विविध प्रदेशों पर अपने अधिकार की या कहें आधिपत्य की स्थापना की जाए। यही कारण है कि इस समय चीनी लोग यूरोप के व्यापारियों का स्वागत करने के लिए इच्छुक नहीं थे। 1644 में चीन में मिंग वंश का अंत होकर मंचू वंश के शासन की स्थापना हो गई थी। 1685 में सम्राट कॉन्ग ही सी ने एक उद्घोषणा प्रकाशित की, जिसके अनुसार यूरोपियन लोगों को चीन के तटवर्ती बंदरगाहों में व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। पर यूरोपियन व्यापारियों ने इस सुविधा का दुरुपयोग किया और वे चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे। परिणाम यह हुआ कि 1757 में सम्राट चीन लुंग ने यह आज्ञा प्रकाशित की कि विदेशी यूरोपियन लोग केवल कैंटन में ही व्यापार कर सकेंगे, चीन के अन्य हिस्सों में नहीं। कैंटन चीन का दक्षिणी बंदरगाह था। 1757 के बाद यूरोपियन व्यापारियों के लिए यह संभव नहीं रहा कि वह कैंटन के अतिरिक्त चीन के अन्य क्षेत्रों में अपने व्यापार का प्रचार प्रसार कर सके। चीनी लोग विदेशी व्यापार के विरोधी थे और उन्हें यूरोपियन लोगों से घृणा थी। ईसाई मशीनरियों को अपने धर्म प्रचार के लिए चीनी सरकार ने अनुमति दे रखी थी, पर साम्राज्यवादी यूरोपियन लोग चीन में जिस नीति का अनुसरण कर रहे थे, उससे विवश होकर ही चीन के सम्राट ने उनके व्यापार के क्षेत्र को केवल कैंटन तक ही सीमित कर दिया था। कैंटन के साथ व्यापार। कैंटन में भी यूरोपियन व्यापारियों को यह अनुमति नहीं थी कि वे वहां सालों भर रहकर अपना व्यापार कर सके। ग्रीष्म ऋतु में उन्हें वहां रहने की अनुमति नहीं थी, वे केवल दिन में आकर व्यापार कर सकते थे। अन्य समय में उन्हें मकाओ चले जाना पड़ता था। व्यापार के दिनों में भी यूरोपियन व्यापारी अपने परिवारों को कैंटन में नहीं ला सकते थे। चीनी सरकार इस बात के लिए उत्सुक थी कि यूरोपियन लोग कैंटन में अपनी अस्थायी बस्तियां ना बसा सकें। यूरोपियन व्यापारियों को यह अनुमति भी नहीं थी कि वे किसी चीनी व्यापारी से माल खरीद सके या चीनी व्यापारी को अपना माल बेच सके। 1702 में इसके लिए एक पृथक चीनी व्यापारियों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई और यूरोपियन व्यापारियों को यह आदेश दिया गया, वे केवल इस सम्राट के प्रतिनिधि के द्वारा ही अपने व्यापार को जारी रखे। यूरोपियन लोगों को चीन से जो माल खरीदना होता था वे इस एक ही व्यापारी से खरीद सकते थे और इसी को अपना माल बेच सकते थे। 50 साल बाद 1752 में इस एक व्यापारी के स्थान पर व्यापारियों के एक संघ को हॉन्ग का निर्माण किया गया और यूरोपियन व्यापारियों को सुविधा दी गई कि वे एक चीनी व्यापारी के स्थान पर इस व्यापारी संघ से माल का क्रय विक्रय कर सके। इस समय चीन के सब बंदरगाह यूरोपियन लोगों के लिए खोल दिए गए थे और इन विविध बंदरगाहों में यूरोपियन देशों के व्यापारियों को हॉन्ग को माल विक्रय का क्रय विक्रय किया करते थे। 1757 में कैंटन के अतिरिक्त अन्य सब बंदरगाह फिर यूरोपियन लोगों के लिए बंद कर दिए गए। कोहोंग के व्यापारी कैंटन में आ गए और वहीं पर उन्होंने अपना व्यापार केंद्र स्थापित किया। कोहोंग में सम्मिलित व्यापारियों की संख्या 13 थी। यूरोपियन व्यापारियों को यह अवसर नहीं था वे अन्य किसी चीनी व्यापारी के साथ व्यापार कर सके। इस प्रकार यदि अन्य किसी चीनी व्यापारी को भी यूरोपियन व्यापारियों के साथ क्रय विक्रय करना होता तो वो केवल कोहोंग के जरिए ही कर सकते थे। यूरोपियन लोग कैंटन शहर के निवास करते थे। वहाँ उनकी व्यापारिक कोठियाँ कायम थी जो कैंटन से बाहर मकाऊ में थी। यूरोपियन लोग चीनी भाषा सीखने का कष्ट नहीं उठाते थे। बातचीत और पत्र व्यवहार के लिए उन्होंने चीनी लोगों को द्विभाषीय के रूप में नौकरी में रखा हुआ था। कैंटन के इन विदेशी व्यापारियों में इंग्लिश लोग सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। 1715 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कैंटन में एक कोठी की स्थापना की गई थी। कंपनी की ओर से वहां अनेक सुपरिटेंडेंट निवास करते थे। स्वतंत्र अंग्रेज व्यापारियों को यह अधिकार नहीं था कि वे कंपनी से पृथक अपना व्यापार कर सकें। 1787 में अमेरिकन लोगों ने भी कैंटन में अपनी कोठियां कायम की और इस प्रकार इंग्लिश पुर्तगीज स्पेनिश डच फ्रेंच लोगों के समान अमेरिकन लोग भी चीन के साथ अपने व्यापार का विकास करने लगे। शुरू में विदेशी लोग चीन से केवल माल खरीदते ही थे। उनके पास कोई ऐसा माल नहीं था जिसे वे चीन में बेच सकते। इसके विपरीत चीन की चाय रेशम और मिट्टी के बर्तन की यूरोप के देशों में बड़ी मांग थी। इन्हें यूरोपियन और अमेरिकन व्यापारी खूब ऊंची कीमत पर खरीद कर अन्य देशों में बेचा करते थे। चीन के माल की कीमत सोने चांदी में अदा की जाती थी, पर धीरे धीरे इन विदेशी व्यापारियों ने भी चीन के बाहर से माल लाना शुरू कर दिया। इंग्लैंड में इस समय तक व्यावसायिक क्रांति का आरंभ हो चुका था। वहाँ कपड़े के बड़े बड़े कारखाने स्थापित होने शुरू हो गए थे जिनमें तैयार हुए वस्त्र संसार के विविध बाजारों में सस्ते मूल्य पर बिक सकते थे। इसी तरह कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की जंगलों से जो फर एकत्र की जाती थी दुनिया के धनी लोग उसे बड़े शौक से खरीदने लगे। इंग्लैंड के कपड़ों और अमेरिका की फरों की चीन में मांग बढ़ने लगी। इस प्रकार विदेशी माल का विक्रय वहां शुरू हुआ। पर ब्रिटिश लोग केवल इतने से ही संतुष्ट नहीं थे। वे चाहते थे कि चीन में किसी ऐसे पदार्थ की खपत को बढ़ाया जाए जिससे वहां निर्यात माल की अपेक्षा आयात माल की मात्रा अधिक हो जाए और उन्हें चीन के माल के लिए सोने चांदी के रूप में कीमत न अदा करनी पड़े। इस समय तक भारत में अनेक प्रदेश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभुत्व में आ चुके थे। कंपनी के व्यापारी वहां अफीम की खेती बड़े परिमाण में कर रहे थे। उनका प्रयत्न था कि इस अफीम के लिए चीन में बाजार तैयार किया जाए, पर परेशानी ये थी कि चीनी लोग अफीम के आदि नहीं थे, पर ब्रिटिश लोगों ने उन्हें अफीम का सेवन करना सिखाया। उन्हें पहले तंबाकू में अफीम मिलाकर चीनी लोगों को इसकी आदत डाली। एक बार अफीम के आदि होकर चीनी लोगों ने तंबाकू के बिना शुद्ध रूप से अफीम खाना और हुक्का पीना शुरू कर दिया। सन 1800 तक चीन में अफीम का इतना अधिक प्रचार हो गया था और इतनी अधिक अफीम यूरोपियन व्यापारियों द्वारा वहाँ बिकनी आरंभ हो गई थी कि उसकी कीमत उस समय की कीमत से अधिक बढ़ गई थी जो विदेशी व्यापारी चीन से खरीदते थे। चीन की सरकार इस स्थिति से बहुत परेशान थी। अफीम के प्रचार को वह अत्यंत आपत्तिजनक समझती थी। स्वास्थ्य और नैतिकता दोनों की दृष्टि से अफीम का सेवन अत्यंत हानिकारक था। 1800 में चीन के सम्राट ने यह आज्ञा प्रकाशित की कि कोई विदेशी व्यापारी चीन में अफीम का व्यापार नहीं करेगा। यद्यपि अफीम का क्रय विक्रय गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था, पर इससे उसका प्रचार रुका नहीं। यूरोपियन व्यापारी छिपकर अफीम को चीन में लाते और उन्हें उसको बेचने लगे। वे सरकारी अफसरों से बचकर या उन्हें रिश्वत देकर इसका व्यापार जारी रख रहे थे, जिससे उन्हें बहुत आमदनी होती। यूरोपियन व्यापारियों से रिश्वत लेकर उन्हें अफीम बेचने से वे नहीं रोकते थे। इस प्रकार चीन में सरकारी राज आज्ञा होने के बावजूद अफीम का व्यापार निरंतर उन्नति करता रहा। पर चीन की सरकार इस ओर से विमुख नहीं थी। वह अनुभव करती थी कि अफीम से देश को भारी नुकसान पहुंच रहा है, अतः वह इस बात के लिए प्रयत्नशील थी कि किस प्रकार भी संभव हो अफीम के व्यापार को रोक दिया जाए। 1838 में चीन की सरकार ने अफीम के व्यापार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की घोषणा की और शुरुआत की। परिणाम यह हुआ अंग्रेज व्यापारियों को अपने व्यापार में नुकसान होने लगा। आर्थिक दृष्टि से अफीम का व्यापार अंग्रेजों के लिए आमदनी का सबसे महत्वपूर्ण साधन था। उसे नष्ट होता देखकर उनके रोष की सीमा नहीं रही। इसी का परिणाम हुआ अंग्रेजों की चीन के साथ लड़ाई का सूत्रपात हुआ। ब्रिटिश लोग अपने स्वार्थ के कारण इस बात की जरा भी चिंता नहीं करते थे कि अफीम से चीनी लोगों को कितना अधिक नुकसान पहुंच रहा है। वे समझते थे कि उन्हें इस बात का पूरा अधिकार है कि जिस माल को चाहे वे चीन में बेच सके। अपने व्यापार पर वे किसी के नियंत्रण को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। चीन की सरकार जो अफीम के व्यापार में रुकावट डाल रही थी, उसका कारण भी केवल नैतिक ही नहीं था। अफीम की मांग अत्यधिक बढ़ जाने से चीन में एक प्रकार से आर्थिक संकट उपस्थित होने लगा था। निर्यात माल की अपेक्षा आयात माल की मात्रा अधिक बढ़ गई थी और इस माल की कीमत चीन के लोगों को सोना चांदी के रूप में अदा करनी पड़ती थी। इससे देश का निरंतर धन विदेशों में पहुंच रहा था और यह स्थिति चीन के लिए अत्यंत चिंताजनक थी। यही स्थितियां चीन और इंग्लैंड के बीच अफीम युद्ध के नाम से जानी जाती है, जिसकी पृष्ठभूमि इसी प्रकार तैयार हुई थी। इसे अंग्रेजों ने केवल अफीम युद्ध ही नहीं कहा। उनका कहना था कि ये एक सभ्यता की लड़ाई है, जहां ये चीनी व्यापारी या चीनी सरकार अपने समकक्ष में नहीं समझती, अतः हम उन्हें इस युद्ध में परास्त कर अपने बराबर लाएंगे। इन तमाम परिस्थितियों में अफीम के व्यापार और अन्य व्यापार ने चीन और इंग्लैंड में युद्ध की जो पृष्ठभूमि तैयार की थी, वो अफीम युद्ध के नाम से जानी जाती है, जो 1839 से 1842 के बीच लड़ी गई। इस युद्ध के क्या क्या कारण थे, आइए हम इस पर चर्चा करें। युद्ध के कारण अफीम के व्यापार को बंद कर देने से ब्रिटिश व्यापारियों को बहुत अधिक नुकसान होने लगा था। वे इस बात के लिए उत्सुक थे कि चीन के साथ युद्ध आरंभ कर उन्हें हरा कर नई प्रकार की व्यापार संबंधी सुविधाएं प्राप्त की जाए। पर ब्रिटेन और चीन के युद्ध का एकमात्र कारण अफीम की समस्या नहीं थी। इस युद्ध को निम्न कारणों से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला कारण है, ब्रिटिश लोग चाहते थे कि चीन में भी अपना प्रभुत्व स्थापित हो। 19वीं सदी के शुरू तक भारत के अनेक प्रदेश ब्रिटेन के प्रभुत्व में आ चुके थे और वहाँ ब्रिटेन का आधिपत्य निरंतर बढ़ता जा रहा था। पूर्वी एशिया के अन्य भी अनेक प्रदेश और द्वीपों पर ब्रिटिश लोग अपना शासन स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील थे। वे समझते थे कि चीन की निर्बलता से लाभ उठाकर वहाँ भी अपना प्रभाव व प्रभुत्व कायम किया जा सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है, इस युग में यूरोपियन लोगों में अपनी उत्कृष्टता की भावना भली भांति विकसित हो चुकी थी। व्यावसायिक क्रांति और वैज्ञानिक उन्नति के कारण यूरोप के देश एशिया के देशों के मुकाबले उन्नति की दौड़ में बहुत आगे निकल गए थे। इसलिए उन्हें यह वध मूल हो गया था कि हम एशिया और अफ्रीका के निवासियों से उत्कृष्ट हैं। प्रभुत्व शक्ति राज्यों की एक अनिवार्य विशेषता होती है। चीन भी एक प्रभुत्व शक्ति संपन्न राज्य है और उसे अधिकार है व्यापार आदि के संबंध में अपनी इच्छा के अनुसार व्यवस्था को कायम कर सके। यह बात उन्हें समझ नहीं आती थी। चीन की सरकार ने यह व्यवस्था की थी कि विदेशी व्यापारी केवल कोहंग के द्वारा ही अपने व्यापार को जारी रख सके। जनता और सरकार के साथ उनका सीधा संपर्क ना हो। पर ब्रिटिश चाहते थे कि कैंटन में स्थित उनका सुपरिटेंडेंट ब्रिटेन का प्रतिनिधि है और चीनी सरकार को चाहिए कि उसके साथ वैसा व्यापार ना हो जैसा कि साधारण व्यापारियों के साथ किया जाता है, उसे ब्रिटेन का प्रतिनिधि माना जाए। 1834 में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार का अंत कर दिया गया था और अन्य ब्रिटिश व्यापारियों को भी यह अधिकार दे दिया गया था कि वे कैंटन में स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सके। इस दशा में ब्रिटिश सरकार ने अपनी ओर से वहां एक सुपरिटेंडेंट की नियुक्ति कर दी थी जो विविध ब्रिटिश व्यापारियों के कार्यों पर निगाह रखता था। 1834 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार का अंत हो जाने के बाद वहाँ सुपरिटेंडेंट के इस पद पर लॉर्ड नेपियर की नियुक्ति की गई थी। कैंटन में लॉर्ड नेपियर का कोई राजनीतिक कार्य नहीं था अपितु उसकी नौकरी केवल व्यापार के लिए हुई थी। इस दशा में चीन की सरकार को यह अधिकार था कि वह उसके साथ संबंध रखे या ना रखे। चीन की सरकार का कहना था, सरकार व्यापार के मामलों में कोई संबंध नहीं है, उसका कार्य है वह जनता पर शासन करे और अपराधियों को दंड दे। व्यापार जैसे विषय व्यापारियों से संबंध रखते हैं, राज्य से नहीं। यदि चीनी सरकार लॉर्ड नेपियर से कोई संबंध नहीं रखना चाहती थी तो इसमें कोई अनुचित बात नहीं थी। पर ब्रिटिश लोग समझते थे कि चीनी सरकार उन्हें नीची निगाह से देखती है और इसलिए ब्रिटेन के प्रतिनिधि से वह कोई संपर्क नहीं रखना चाहती। पर वास्तविक बात इसके ठीक उल्टी थी। कैंटन में विद्यमान ब्रिटिश व्यापारी अपने को व्यापारी ही नहीं समझते थे, वे चीन में ब्रिटिश प्रभाव को स्थापित करने के लिए भी प्रयासरत थे। इसलिए वे यह कहते थे कि उनके सुपरिटेंडेंट जिसकी नियुक्ति ब्रिटिश सरकार ने की है या अधिकार है उसके पास कि वह व्यापार जैसे मामलों पर सम्राट और उसके उच्च अधिकारियों से ब्रिटिश के राजदूत के रूप में विचार विनिमय कर सके। चीन की सरकार ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट की इस स्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। ब्रिटेन और चीन में जो विरोध बढ़ रहा था उसमें यह एक प्रमुख कारण रहा। तीसरी प्रमुख बिंदु है, कैंटन में निवास करने वाले ब्रिटिश लोग कानून की दृष्टि से चीन के अधीन हैं या नहीं। इस प्रश्न पर भी ब्रिटेन और चीन में मतभेद था। 1784 में एक अंग्रेज की बंदूक से एक चीनी नागरिक की हत्या हो गई थी। चीन की सरकार का कहना था कि इस अंग्रेज को चीनी पुलिस को सौंप दिया जाए और चीनी अदालत में उसके अपराध का निर्णय कर उसे सजा दी जाए। पर ब्रिटिश लोगों का कहना था, यह संभव नहीं है कि किसी अंग्रेज को चीन की अदालत के द्वारा सजा दी जाए और उसके अपराध का निर्णय किया जाए। 1784 में इस मामले में उस समय अंग्रेज को गिरफ्तार कर चीनी अदालत के द्वारा उसे मृत्युदंड दिया गया। अंग्रेज लोग इससे बहुत असंतुष्ट हुए। 1793 में मैकार्टने नामक अंग्रेज के नेतृत्व में एक ब्रिटिश मिशन ने यह प्रयत्न किया कि कैंटन की अंग्रेज बस्ती में अंग्रेजों को स्वशासन का अधिकार मिल जाए और अंग्रेज अभियुक्तों का निर्णय अंग्रेजी अदालत के द्वारा किया जाए, पर इस प्रयत्न में मैकार्टने मिशन की सफलता नहीं मिली। 1793 के बाद भी अनेक ऐसे मामले पेश आए जिनमें ब्रिटिश अभियुक्तों पर चीनी अदालत में मुकदमे दायर किए गए और उन्हें दंड दिया गया। ब्रिटिश इस बात से बहुत असंतुष्ट थे। उन्हें यह अत्यंत अपमानजनक लगता था कि चीन का कोई न्यायाधीश उनके मामलों का निर्णय करे और उन्हें सजा सुनाए। चौथा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, अफीम की समस्या ब्रिटेन और चीन के इस युद्ध का एक प्रमुख व तात्कालिक कारण थी। 1839 में चीन की सरकार ने कैंटन में एक विशेष राजकर्मचारी की नियुक्ति की जिसे अफीम के व्यापार का अंत करने का कार्य सौंपा गया। उसने ब्रिटिश और अनेक अन्य यूरोपियन व्यापारियों को इस बात के लिए विवश किया कि उनके पास अफीम की जितनी भी पेटियां हो वे सरकार को सौंप दे ताकि उन्हें नष्ट कर दिया जाए। इस राजकर्मचारी ने यह भी कहा यूरोपियन व्यापारियों को यह आश्वासन देना होगा कि वे भविष्य में फिर कभी कैंटन में अफीम का व्यापार नहीं करेंगे या अफीम नहीं लाएंगे। ब्रिटिश व अन्य यूरोपियन व्यापारियों ने अपने पास विद्यमान अफीम को चीनी राजकर्मचारी को सौंप दिया, पर वह इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि उन्हें यह आश्वासन दे कि भविष्य में वे फिर चीन में अफीम का व्यापार नहीं करेंगे। उनका ख्याल था कि शक्ति का उपयोग कर वे चीन की सरकार की आदेश को उपेक्षा कर सकते हैं। इस दशा में युद्ध का आरंभ हो जाना सर्वथा स्वाभाविक बात थी। चीन और ब्रिटेन का युद्ध 1839 से 1842 तक चीन और ब्रिटेन में यह युद्ध जारी रहा। इस काल में ब्रिटिश जल सेना ने कैंटन का घेरा डाल दिया था। समुद्र में ब्रिटेन की शक्ति का मुकाबला करना चीन के लिए कठिन था, जिस कारण प्रशांत महासागर के तटवर्ती अनेक नगर और द्वीप ब्रिटेन के कब्जे में आ गए थे। ब्रिटिश सेना ने चिनकियांग को जीतकर नानकिंग पर भी हमला करने की तैयारी शुरू कर दी थी। इस दशा में चीनी सरकार ने यही उचित समझा कि ब्रिटेन के साथ समझौते की बात आरंभ की जाए। अस्त्र शस्त्र और सैन्य शक्ति की दृष्टि से इस समय चीन के लोग ब्रिटेन का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। 29 अगस्त 1842 को चीन और ब्रिटेन में समझौता हो गया और यही समझौता नानकिंग की संधि के नाम से